अगला वाक्य है अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे को मौत के डर से गलत शरायत मानने से रोकना। ये बहुत खूबसूरत वाक्य है, सुनिएगा इसको। जब अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का मुकरमा में थे तो हज्जाज बिन यूसुफ सकफी, सकफी क्यों, कबीला सकीफ से थे। जब अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का मुकरमा में थे तो हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने मक्का मुकरमा का मुहासरा किया। वो अपनी वालदा मुख्तरमा हज़रत अस्मा बिन तबी बकर की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने अपने बेटे को मौत के डर से नामुनासिब शराइत तस्लीम करने से मना कर दिया। हाफिज़ ज़हबी ने उरवा से नकल किया और उन्होंने कहा, मैं और मेरा भाई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कत्ल होने से 10 दिन पहले अपनी वालदा के पास हाजिर हुए और वो उस वक़्त तकलीफ़ में थी। अब्दुल्ला ने पूछा, आप कैसी हैं? उन्होंने फरमाया, मैं तकलीफ़ में हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, यकीनन मौत में आफ़ियत है। उन्होंने फरमाया, शायद तुझे मेरा मरना पसंद है, ऐसे ना करो। और साथ ही वो हंसने लगी। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे दो में से एक बात तक पहुँचने तक मौत की ख्वाहिश नहीं रखती, यानी मेरा दिल है कि मुझे मौत ना आए जब तक मैं इन दो में से कोई एक चीज़ ना देख लूँ। या तो तुम कत्ल कर दिए जाओ और मैं इस पर सब्र करके सवाब हासिल करूँ। कौन कह रहा है? माँ कह रही है बेटे को। कोई माँ कहती है आज के दौर में ऐसे? यानी आप देखिए, जिसके दिल में अल्लाह और उसके दीन की मोहब्बत बढ़ेगी वही ये कहेगी, वरना तो कोई नहीं कहेगा। दूसरी क्या, या तुम कामयाब हो जाओ और मेरी आंखें ठंडी हो जाएं, खबरदार मौत के डर से किसी नामुनासिब तजवीज़ को कबूल ना करना, यानी शर्त मान के जान ना बचा के आ जाना। कैसी माएँ थी वो, अल्लाह अकबर। क्या पता चला कि नामुनासिब शरायत और मौत में से एक को चुनने का फ़ैसला करना हो तो बिला तरद्दुद मौत को चुन लिया जाए। किसी अजीज़ और प्यारे को इस बात की नसीहत करना किस कदर कठिन और दुश्वार मामला है, और ख़ास तौर पर जबकि नसीहत गोशे जिगर और नूरे नज़र को की जाए, यानी बेटे को। लेकिन यहाँ ताज्जुब नहीं, क्योंकि नसीहत करने वाली सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी ज़ात नताक़ीन अस्मा हैं। ये ज़ात नताक़ीन क्या है भाई? जब अल्लाह के नबी सल्लम और अबू बकर ने हिजरत की थी तो हज़रत अस्मा खाना लेकर जाती थी, पटका एक कह लें दुपट्टा सा बांधती, उसके एक सिरे पे खाना, दूसरे और उसको कमर में बांध लेती थी। अरबों का रिवाज था, क्योंकि ऊपर पहाड़ियों में जाना पड़ता है तो अगर हाथ बंधे होंगे तो ऊपर जाने में मुश्किल होती, तो वो कपड़े के साथ अपने जिस्म के साथ वो खाना बांध लेती और ख़ुद फिर हाथों से ऊपर चढ़ती। तो उसी से ज़ाता कहते हैं वाली, जू ज़ा ज़ी, और नताक़तैन दो पटकों वाली, यानी दो दुपट्टों वाली या दो चादरों वाली, तो उससे उनका नाम पड़ा। इमाम तबरी ने इस वाक़े पर मज़ीद तफसील बयान की है। उन्होंने मखरमा बिन सुलेमान वालबी से रिवायत नकल की। उन्होंने बयान किया, काफ़ी तवील वाक़ जब इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लोगों की बेवफाई देखी तो अपनी वालदा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, ए मेरी माँ, लोग हत्ता के मेरी औलाद और घर वाले भी मुझे छोड़ गए हैं। अब मेरे साथ बहुत कलील तादाद में लोग बाकी रह गए हैं जिनमें थोड़ी देर से ज़्यादा दफा की इस्तेआत नहीं, और मुखालिफिन मुँह मांगी दुनिया देने के लिए तैयार हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला की कसम है बेटे, तू अपने आप यानी अपने मामलात को ज़्यादा जानने वाला है। अगर तू समझता है कि तू हक पर है और हक की तरफ दावत दे रहा है तो अपनी राह पर चलता रहे। इस मिशन की खातिर तेरे साथी कत्ल किए गए, अब तो अपनी गर्दन बनू उमैया के लौंडों के सपुर्द ना कर कि वो इससे खेलें, और अगर तेरा मकसूद दुनिया था तो तू बदतरीन बंदा है। इसकी खातिर तूने अपने आप को हलाकत में डाला और अपने साथियों को हलाक किया, और अगर तुम ये दलील पेश करते हो कि मैं तो हक पर था लेकिन जब मेरे साथियों ने बुजदिली दिखाई तो मैं भी कमज़ोर हो गया, तो मैं जवाब में ये कहूँगी कि ये आज़ाद और दीन वालों का तरीका नहीं। तूने दुनिया में कितने दिन रहना है? हक की खातिर कत्ल होना बेहतर है। ज़रा सा नोट करें, अगर हम अपनी औलादों को और अपने प्यारों को ये एहसास दिला दें ना कि दुनिया में ज़्यादा दिन रहना नहीं है, तो बहुत सारे फ़ैसले आसान होते हैं। यकीन करें, बहुत सारी खराबियां जो हमारे अपने अंदर भी हैं या हमें किसी दूसरे में दिखती हैं, उसकी वजह इस सोच का ना होना है। दुनिया दुनिया दुनिया, हलाल से हराम से, जायज़ से नाजायज़ से, बस ले लो। ऐसे दिल बदल जाएगा उनका अगर उनको ये बात समझ आ जाएगी, जैसे कि रात दिन में बदलती है या दिन रात में बदलता है। तो ये सोच अपने अंदर भी लेके आनी है, मैंने कौन सा हमेशा रहना है, पता नहीं कितने दिन रहना है, तो इससे इंशाल्लाह फिर सुकून भी आएगा। इब्ने ज़ुबैर इनके करीब हुए, इनके सर को चूमा, फिर अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम मेरी यही राय है और इसी की तरफ आज तक मैं दावत देता रहा हूँ। मैं ना तो दुनिया की तरफ माइल हुआ हूँ और ना ही मैंने इसमें जीने को पसंद किया है। मेरे खुरूज का सबब अल्लाह की हुरमतों की पामाली के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला के लिए गज़बनाक होना ही था, लेकिन मैंने चाहा कि आपकी राय से आगाह हो जाऊं। आपने मेरी बसीरत में इजाफा फरमाया। ऐ मेरी माँ, देखिए यकीनन मुझे आज कत्ल कर दिया जाएगा, इस पर आपका गम शदीद ना हो जाए। यानी बेटा पहले से तसल्लियाँ दे रहा है कि अगर मैं मर गया तो आपने गम नहीं करना। मामले को अल्लाह ताला के सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके बेटे ने जानबूझकर ना गलत काम किया है और ना ही बेहयाई का इर्तकाब किया है। इसने हुक्म इलाही में जोर नहीं किया, जोर कहते हैं जुल्म को, और ना ही इसने किसी को अमान देकर बेवफाई की है। इसने किसी मुसलमान या जिम्मी, जिम्मी कौन होता है, नॉन मुस्लिम, जो किसी मुसलमान मुल्क में जिजिया देकर रहता है, इसने किसी मुसलमान या जिम्मी पर जुल्म का कसद नहीं किया। किसी भी अपने आमिल के जुल्म की रिपोर्ट मिलने पर मैं राज़ी नहीं हुआ, बल्कि मैंने इस पर इसको टोका है। मैंने अपने रब की रज़ा पर किसी बात को तरजीह नहीं दी। ऐ मेरे अल्लाह, आप मेरे बारे में ज़्यादा जानते हैं कि मैं ये बातें अपने नफ्स की पाकी बयान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वालदा की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, ताकि वो मुतमईन हो जाएं। इनकी वालदा ने फरमाया, अगर तुम मुझसे पहले दुनिया से रवाना हो गया तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मुझे तुम्हारे बारे में तसल्ली और इत्मीनान होगा, और अगर मैं तुमसे पहले इस दुनिया से कूच कर गई तो मेरे दिल में ये तमन्ना रहेगी कि मैं दुनिया से रवाना होने से पहले तुम्हारे इंजाम को देख लेती। उन्होंने कहा, मेरी माँ, अल्लाह ताला आपको अच्छी जजा अता फरमाए, आप मेरे लिए कभी भी दुआ को ना छोड़ना। उन्होंने फरमाया, मैं कभी भी तेरे लिए दुआ को नहीं छोड़ूंगी। जो बातिल पर कत्ल किया गया, मेरा इससे तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यकीनन तू तो हक पर कत्ल किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा है, मेरे अल्लाह, तवील रात में लंबे क़याम पर, तवील गिरियाजारी पर, मदीना और मक्का की दोपहर की शदीद गर्मी की, रोज़ों की वजह से प्यास पर, अपने बाप पर, मेरे साथ इसके हुस्ने सलूक पर रहम फरमा। देखिए अपनी नेकियां दिखा रही है ना, अगर ये नेकियां ना होती तो इनको वसीला बनाकर दुआ कैसे करती। तो इसे क्या पता चलता है कि हमें कुछ नेकियां ऐसी ज़रूर रखनी चाहिए अपने हाथ में कि जिनको करने के बाद हम किसी मुश्किल वक्त में वही चीज़ें दिखाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग सकें और अल्लाह ताला को बता सकें कि हमने ये काम सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए किया था। आपको अजीब नहीं लगते ये लोग आज कितने नापैद हैं? ऐसे लगता है कि आज के दौर में ऐसे किरदार नज़र ही नहीं आते। हैं तो छुपे हुए हैं तो बहुत से माशाल्लाह, लेकिन उसके तकाबुल में उससे मुख्तलिफ शख्सियात रखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। असल ये बात है, एक होती है मिनॉरिटी, एक होती है मेजॉरिटी। आज मेजॉरिटी दूसरे रुख की है, लेकिन ऐसे लोग वाकई जिसको आप कहना चाहिए कि थोड़ों में से भी थोड़े हो गए। फिर इसके बाद कहती हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, मैंने इसको आप किसके बारे में फ़ैसले के सपुर्द कर दिया। देखें क्या कह रही हैं कि अल्लाह मेरे बेटे के बारे में आपका जो फ़ैसला, मैं राज़ी हूँ और आपके फ़ैसले पर राज़ी हूँ, बस आप मुझे अब्दुल्ला के बारे में सब्र और शुक्र करने वालों का सवाब अता फरमाना। ये स्पिरिट चाहिए आज की औरत को, यानी ये मेरा ड्रीम है कि आज की माँ, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, जवान है, माँ की ये स्पिरिट हो जाए कि मैं अपने बच्चे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान तक करने को तैयार हूँ। देखिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चली थी ना, बाप ने चला दी थी, वो तो अल्लाह ने बचा लिया। अगर इब्राहिम वो छुरी ना चलाते तो हो सकता है वाकई इस्माईल किसी हादसे में मारे जाते, हो सकता है किसी बीमारी में मारे जाते, लेकिन बेटे को छुरी के नीचे रख कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस हादसाती मौत से बचा लिया। बहुत बड़ा सबक है, ये रूह पैदा कर लें फिर देखें दुनिया में जीने का मज़ा। फिर तो जीने का भी मज़ा है तो मरने का भी मज़ा है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। पहली बात है, हज़रत अस्मा की निगाह में हक़ पर साबित कदम रहने की अहमियत कितनी थी कि गलत बात को नहीं मानना, बल्कि लख्ते जिगर का हक़ के रास्ते में कुर्बान होना और इस कुर्बानी पर सब्र करना उनको ज़्यादा पसंद और काबिल कबूल था। देखिए ये एक सियासी जंग थी, जब ये हज़रत अस्मा के बेटे जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे तो उनके साथ ये मामला हो रहे थे, तो बहुत फितनों का दौर था। यानी जैसे आज के दौर में आप कहें ना, हुक्मरानों पे तशद्दुद और हुक्मरानों का तशद्दुद और सोसाइटी में जुल्म सितम, उन हालात में हज़रत अस्मा के बेटे ने जान दी थी। तो आज के हालात में भी ऐसी माएँ होंगी तो ज़्यादा दिन जुल्म नहीं रहेगा। तो लिहाजा इस चीज़ से क्या पता चलता है कि माँ में अगर सब्र की तौफीक है ना तो बच्चे में भी आ जाएगी। फिर हज़रत अस्मा ने बेमिसाल जुर्रत और शुजात और गैर मामूली सराहत और वजाहत से बेटे को हक़ पर डटे रहने की तलकीन और ताकीद फरमाई। आप और मैं भी अपने लिए यही नसीहत रखें कि हमने अपने बच्चों को यही नसीहत करनी है कि आपने इस रास्ते में जम जाना है, कभी इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, तभी तो फिर उनमें भी जरूरत पैदा होगी, वरना तो वल्ला ही माएँ डरपोक हैं तो बच्चे उससे ज़्यादा डरपोक हैं। आज देखिए ओवरऑल बच्चे, बच्चों से मेरा जवान होते हुए लड़के डरपोक हैं, रिस्क टेकर नहीं है, बैठे हुए हैं। वो अलामा इकबाल ने कहा था ना कि रुलाती है मुझको जवानों की तन आसानी। तन आसान हो गए, एक हाथ में बर्गर है तो दूसरे में चिप्स हैं, एक में कोक है तो एक में बिस्किट हैं, कुकी है, तो वो नरम मिजाज हो गए हैं। वो कदम नहीं उठा सकते, दरवाज़ा नहीं खोल सकते, सुबह उठ नहीं सकते, बाप बूढ़े होने के बावजूद ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें तरबियत का नक्शा है। अल्लाह ताला हमें अपनी इसलाह की तौफीक अता फरमाए। फिर इसके बाद क्या पता चला कि मसलहत और ज़रूरत के पेश नज़र एक इंसान अपने औसाफ़ का जिक्र कर सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपनी वालदा की तसल्ली और इत्मीनान की खातिर दुनिया के मकासद से अपनी जिद्दोजहद के मुबर्रा होने का जिक्र किया। मुबर्रा किसको कहते हैं? बरी होना। हज़रत इब्ने ज़ुबैर कितने आला और साफ़ वाले थे कि इनकी वालदा मुख्तरमा की सच्ची शहादत के मुताबिक तहज्जुद में तवील क़याम करने वाले, बहुत ज़्यादा अल्लाह के रूबरू गिरिया और जारी करने वाले, दियारे मुक़दसा की शिद्दत की गर्मियों में रोज़े रखने वाले और वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करने वाले थे। अल्लाह सब की औलादों को ऐसा बना दे। हज़रत असमा का सब्र अज़ीम और अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी होना, ये भी इससे पता चलता है। तो फिर वही बात है कि माँ का किरदार पुख्ता होगा तो बच्चों का भी होगा। आज तो लफ्ज़ जिहाद बोलना डर लगता है, आज तो ये गाली बन गई, आज तो बोलते हुए सोचते हैं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा हमने ये लफ्ज़ क्यों बोल दिया। याद रखिए जज्बा जिहाद में किताल ही नहीं सिर्फ होता, अल्लाह के रास्ते की मेहनत है। अगर आपके बच्चों को भाग दौड़ की आदत पड़ जाती है, वो दीन के कामों में आगे आगे बढ़ते हैं, तो कल दुश्मन आ गया तो वो चल पड़ेंगे। लेकिन जब हमारे बच्चे दीन के कामों में तेज़ नहीं है, जंग के मैदान में कहाँ आगे आएंगे। एक आखिरी वाक्य रह गया, इसके बाद इंशाल्लाह इस पूरे पे हम चंद जुमले बोलेंगे। 40वां वाक़िया क्या है? उम्मे सात का बेटे को जल्द लश्कर इस्लामी के साथ मिलने का हुक्म देना। गज़वे खंदक के मौके पर हज़रत कबशा बिनत राफ़े अंसारिया ने अपने बेटे साद बिन माज को लश्कर इस्लामी से दूर एक क़िले के पास से गुजरते देखा तो इन्हें फ़ौरन लश्कर इस्लामी में जाकर शामिल होने का हुक्म दिया। इमाम इब्ने इसहाक ने उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत नकल की है, यकीनन वो गज़वे खंदक के मौके पर बनू हारिसा के क़िले में मौजूद थी जो कि मदीना का सबसे महफूज कला था। उम्मे साद भी इसी क़िले में थी। हज़रत आयशा ने बयान किया कि तब हम पर पर्दा फ़र्ज़ नहीं किया गया था, साथ वहाँ से गुजरे, उन्होंने घनी गिरों वाली ज़रा पहन रखी थी और इसमें से इनकी सारी कोहनी बाहर निकली हुई थी और वो हाथ में खंजर थामे मुतकब्बिराना चलते हुए ये शेर पढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर ठहरो, लड़ाई में जमल नामी शख्स पहुँच रहा है, वक्ते मौत आने के बाद मरने में कोई मज़ायका नहीं। इनकी माँ ने कहा है, मेरे प्यारे बेटे लश्कर इस्लामी के साथ जल्दी शामिल हो जाओ, तुमने वल्ला ही ताखीर कर दी है। वाक्य से क्या पता चला कि अल्लाह अकबर मार्के कारजार की तरफ मुजाहिद के जाने पर माँ को ना तो हसरत है और ना अफसोस, ना रंज ना गम। वहाँ ना चीखो पुकार थी और ना शोर व शगल था, ना रोना पीटना था और ना ही नौखा मातम, बल्कि माँ ने बेटे को जल्द इस्लामी लश्कर में जाकर शामिल होने का हुक्म दिया। रदी अल्लाह अनहा वबनिहा व अरदाहा। उम्मत इस्लामिया को आज उम्मे साथ ऐसी माओं की किस कदर शदीद ज़रूरत है जो अपने बेटे को ऐसी तलकीन करें। और वमा ज़ालिकल्लाही भी अज़ीज़, ये काम अल्लाह पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। सूरत फातिर की ये आयत है। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक के ख़वातीन का अपने करीब के लोगों को रोकना इंडिविजुअली, ये पूरा हुआ। कितने ही वाक़ियात हैं हमारे लिए, और इनमें से कोई एक दो चार भी हमने अगर अपने लिए ले लिए तो आप देखिए कि हमारी इसलाह होगी। ख़ास तौर पे जो आखिरी दो वाक़े थे इस पे थोड़ी सी बात करके इस टॉपिक को क्लोज़ करेंगे। और वो क्या है कि माएँ अपने बच्चों को मैदाने जंग में इतने शौक़ से भेजती थी, ये कैसे हो जाता है? मसलन चलिए हम अपने ऊपर लेते हैं, हमारा जवान बच्चा है, किस किस माँ को ये कॉन्फिडेंस है कि अल्लाह ना करे कल इस्लाम पर कोई वाकई ऐसी बात आ जाए या हम अपने ही मुसलमानों पे आ जाए। आई तो पड़ी नहीं है, चारों तरफ है, हम तो उसको मानना ही नहीं चाहते, बल्कि बच्चे जाना चाहते हैं मुल्कों में। यहाँ पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बाहर के मुल्कों में जैसे सीरिया का जिहाद है या उससे पहले जो मुल्कों के थे, तो यंग छुप छुप के जा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के जाते हैं, माँ बाप से बताए बगैर जाते हैं क्योंकि उनके दिलों में जज्बात बहुत होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने कल्चर की बात करें, इल्ला माशाल्लाह, लेकिन अमूमी तौर पे बहुत कम जज्बा जिहाद है। हम ये सोचते हैं कि ये बच्चे अब इसमें जाएंगे तो मर जाएंगे, खप जाएंगे, और जो बच्चे जाते हैं और जो वहाँ अपनी आंखों से देखते हैं वो नाकाबिले बयान है। क्या हमारे बच्चे मैदाने जंग में एकदम कूद जाएंगे? कभी भी नहीं कूदेंगे। लिखें ये बात, मैदाने जंग में वही कूदता है जो इससे पिछली नेकियों में कूद चुका हो। जो फजर की नमाज के लिए उठ के नहीं जा सकता, वो फजर पे आए हुए दुश्मन का मुकाबला करने भी नहीं जाएगा। जो अपनी सोसाइटी के अंदर दीन का काम करने, तबलीग करने, इस कुरान को आम करने के लिए नहीं निकल सकता, कल दुश्मन आ गया शहर में तो वो नहीं बचाएगा। ये जो नमाज, रोज़ा और नेकियों के कामों में अल्लाह ने बरकत रखी है ना, ये असल में प्रैक्टिस है कि दुश्मन किसी भी वक्त आ गया तो सोए ना रहना। मुसलमान गाफिल कौम नहीं होती। तो फिर खुलासा क्या है? अपने बच्चों में नेकियों का ताउन पैदा करें। देखिए बहुत फ़र्क है दोनों में, एक है खुद नेकी करना, एक है नेकी में ताउन करना। खुद नेकी करना क्या होता है? नमाज रोज़ा, फ़र्ज़ पढ़ते थे सुन्नत शुरू कर दिए, सुन्नत पढ़े नफिल शुरू कर दिए, पांच नमाज़ें पूरी हुई तो तहज्जुद शुरू कर दी, इशराक शुरू कर दी, चाश्त कर दी, आपकी ज़ाती नेकी है, इबादत। कल हमारा जो दर्स था गुजरात में, उसका टॉपिक ही ये था कि दीन का दर्द, इबादत या ज़ाती नेकियों और दीन के काम में फ़र्क क्या है। उसमें यही खुलासा था कि रिसोर्सेज जो हैं, नहीं हैं थोड़े ज़्यादा, आप चल पड़े। आपसे मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अमेरिका फतह हुआ कि नहीं और चाइना में इस्लाम आया कि नहीं, बट ये ज़रूर पूछा जाएगा कि हमारे इर्द गिर्द हुआ कि नहीं। और मैंने ऐसी ऐसी सिस्टर्स को देखा है, एक हमारी बहुत अच्छी साथी हैं माशाल्लाह, उन्होंने जब खुद कुरान से अपने आप को करीब पाया, फिर उन्होंने अपने फैमिली को पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया, वो खुद बाहर होती हैं, तो एक करके दो करके फिर एक वक्त आया उनकी बहनें सारी दीन पे आ गईं। दीन से मुराद ये कि सीधी सी सीधी सी बात है कि मैं आज दीन में आना इसको कहती हूँ कि कुरान पे आ गए, कुरान का शौक हो गया। फिर खैर ये जो व्हाट्सएप क्लासेस ग्रुप्स हुई, इससे चीज़ आम हुई और आम हुई, यानी ऑलमोस्ट उनकी फैमिली के 15-20 लोग जो थे वो इसी कुरान के सफ़र में हमारे साथ चले। जब मैंने इस दफ़ा आना था तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा करीबी रिश्तेदार है, ये बेटी या बेटे का बेटा कोई भी होगा, कहती कि वो भी कोर्स कर रहा है सबीरुल जन्ना का, और वो जवान बच्चा है, अभी न्यूली मैरिड है, अभी छोटी सी एक बच्ची है, 7-8 पारे वो कर चुका है। तो कहने लगी कि वो मुझे कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान आना था, अभी पता चल जाता व्हाट्सएप से और बाहर, तो आप उन्हें कहें कि मुझे कोई नेकी का मौका दें, उनको जहाँ जाना है जो करना है मैं उनके साथ रहूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे दिल में जोश उठता है कि मैंने नेकी में तावन करना है। तो ज़ाहिर है वो बाहर से आएंगे और दर्स होंगे और उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बताएं। तो मैंने उन्हें कहा कि बहुत शुक्रिया, ज़रूरत हुई करेंगे। और पिछले साल भी जब हम आए तो तकरीबन 8 दिन तक वो बच्चा अपनी बीवी के साथ और जिस तरह भी हालात हुए, दो गाड़ियों में वो लोग हमारे साथ साथ फिरे। मेरा ख्याल हमने कितने शहर फिर लिए, पिंडी इस्लामाबाद तक गए। कहने का मतलब ये कि ये जज्बे किसने दिए? अब अगर उसकी माँ ही खुद कर रही होती काम, तो उसके बच्चे को शायद वो एक दिन घंटे के लिए भी कहती चले जाओ कहीं, तो नहीं जाता। और मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जब कुरान अंदर जाता है ना, तो दूर वाले करीब हो जाते हैं। कुरान एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि ये नए रिश्ते जोड़ देता है, और इसका अपोजिट भी है। तो ये दुआ करें कि आपके बच्चों के हाथों में कुरान आ जाए। क्या आपने कुछ नहीं किया आज तक अपने बच्चों के लिए, जिसको आप दलील बना लें? कोई मान नहीं है। मुझे तो बहुत मान है, मैं किसी के लिए थोड़ा सा तो करके दूं, मैं उसके मान पे 10 बातें उसे मनाऊंगी। मैंने आपका ये नहीं किया था, मैं आपकी फुफो नहीं हूँ, मैं आपकी फला नहीं हूँ। क्यों? कि मुझे मान है मैंने किया, भाई मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको क्यों छोड़ूँ तनहा? चलो मेरा बच्चा ये करो, चलो मेरा बेटा, चलो पकड़ो ये करो वो करो। अपने बच्चों से नेकियाँ करवाएं, हर दिन ही ये बात हम कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करें। चल मेरा बच्चा तुम ये पकड़ो, तुम ये करो, तुम गाड़ी निकालो, तुम वो करो, फिर जो ज़िंदगी को आप इंजॉय करेंगे, आपके अल्लाह की कसम मरने को दिल ही नहीं करेगा कि ये मेरी जन्नत है, मैंने इसमें से नहीं मरना। क्योंकि लाइक माइंडेड लोगों में रहना यही तो जन्नत है। ला तस्मऊ नफ़ीहा लाग़िया, एक जगह तो ला यस्मऊ नफ़ीहा लग़वन वला तासीमा। जन्नत की खूबी यह है कि वहाँ लाइक माइंडेड लोग होंगे। वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, सूरत यासीन में आप पढ़ते हैं कि पहले ही कह दिया जाएगा चलो मुजरिमो तुम झट जाओ। तो जन्नत जन्नत क्यों है कि वहाँ जाके कुड़ना नहीं पड़ेगा? दीनदार और बेदीन इकट्ठे घर में रहने पे मजबूर नहीं होंगे। ये दुनिया की भी जन्नत है, अल्लाह की कसम। आपके घर में आपके शौहर दीन में आपके मुआविन बन जाए, आप उनकी बन जाए। चले बाज़ दफ़ा शौहर दीन पे होते हैं, आम सी लड़कियाँ जाती हैं बहुत दीनदार हो जाती हैं, मोहब्बत शौक़ तबलीग सब कुछ। आपके बच्चे, मैं कहती हूँ आपको किसी दूसरे तीसरे की बात की परवाह नहीं है, वो घर असल में मेरा घर मेरी जन्नत। दुनिया से जाने से पहले हम इसको एंजॉय कर लें। मैं आप सबको दुआ दूंगी कि अल्लाह आपके घरों को जन्नत बना दे। आपका एक दर्द, एक गम, लेकिन इसके लिए माँ को बच्चों के साथ एक खास ताल्लुक कायम करना पड़ता है, और ताल्लुक अल्लाह की किताब देती है। ये सोच, यानी ये कुरान इस तरह रिश्तों को बदलता है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे हज़रत उमर ने गज़वे बदर में अपने सगे मामू को कत्ल कर दिया और बड़े खुश थे, और जब बदर के कैदियों का मौका आया कि क्या किया जाए, तो अबू बकर तो कह रहे थे इनको छोड़ देते हैं, जो पैसे मिलेंगे इस्लाम को फ़ायदा देंगे, क्योंकि पैसों की बड़ी ज़रूरत थी। तो हज़रत उमर ने क्या कहा, नो, सबको कत्ल कर दें, क्योंकि इनके जहनों में इस्लाम के ख़िलाफ़ इरादे हैं, प्लान है, ये तो सांप है, सांप को छोड़ देंगे तो नुकसान होगा। बल्कि ये करें कि हम में से जिसका जो करीबी रिश्तेदार है वो उसी के ज़िम्मे लगाया जाए कि इसको तुमने मारना है। अब क्या उमर जज्बाती थे? नहीं, अल्लाह के लिए कुछ करना, अल्लाह के लिए किसी को अपनाना या अल्लाह के लिए कुछ छोड़ना, यही असल में नेकी है। ये ईमान का एक आखिरी हिस्सा है, अलहुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला। इस पर एक पूरी बुक है इकबाल केलानी साहब की, अलहुब्बु फिल्ला, मेरी मोहब्बत आपसे अल्लाह के लिए, और अलबुग्ज़ु फिल्ला, मेरा बुग्ज़ आपके लिए अल्लाह के लिए। वल्लाह की बाज़ दफ़ा आप कुछ रिश्तों की मोहब्बत में चूर होते हैं, आप रोते हैं उनकी मोहब्बत में, लेकिन आप उनकी गलत चीज़ पे उन पर बुग्ज़ रखते हैं। तो ये जज्बे उभारने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे आपके लिए आसान करे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ कि ख़वातीन अपने करीबी रिश्तेदारों में कैसे बात करें। कोई सवाल, कोई बात है जहन में? जी आप।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम पेरेंट्स हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं ना, जब तक हम खुद अपनी इस्लाह नहीं करेंगे और बच्चे हम लोगों से ही सीखेंगे ना, हमें खुद उनको ये सब सिखाना चाहिए ना, उनको अच्छा माहौल
बिल्कुल।
देंगे तो वो खुद ब खुद उसमें
देखिए,
रहेंगे।
जो बंदा कुरान सुनेगा ना, वो कुरान के लिए कुछ तड़पेगा। आपके मेरे कहने से कोई कुछ नहीं करेगा। कल भी किसी से हमारी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि दीन के सिलसिले में बहुत सारे लोग यहाँ मदद करते हैं, पर वो किस बुनियादों पे करते हैं? सीधी सी बात है, रिश्तेदार है, भाई को कह दिया ये काम कर दो, कर देंगे, क्योंकि भाई है। मामू को कह दो कर दें, चचा को कह दो कर दें, फुफ्फो को कह दो कर देंगे, बट ये उनका मिशन नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जिनका अपना पैशन हो कि हमने ये काम करना है। और ये कौन होंगे? वही मामू कुरान से जुड़ जाएंगे तो वो फिर आपसे कहने से पहले ही कर लेंगे। वही चचा अगर खुद कुरान पढ़ लेंगे तो वो भतीजी भांजी के कहने पे नहीं आएंगे, वो खुद ही कहेंगे पीछे हो जाओ मैं करता हूँ। ये तड़प पैदा है। और याद रखे, नेकी में हिस्सा डल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दो जगह विजिट की हैं इस पूरे ट्रिप में, दो मुख्तलिफ शहरों में। एक ने तो घर की ज़मीन ख़रीदने से लेके अब इस वक्त कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल आखिरी मरहला है। मेरा दिल है कि जिस दिन वो पूरी हो, मैं आप सबको बस में लेके चलूँगा अगर मैं इधर हूँ तो। क्या वो जज्बे हैं, क्या वो सोचे हैं! ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद कर अब तक पूरा 3 फ्लोर का मदरसा बना रहे हैं, जितना भी वो जगह के अंदर हो सकता है। और अब वो इस प्रोसेस में है कि 2 माह के अंदर इसमें क्लासेस शुरू करनी है। वो ब्रदर रिटायर्ड है, अल्लाह ने उनको पैसा भी दिया है ना, तो दिल भी वो उस्माने गनी जैसा दिया है। हम इसको पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि उनके हाथ से पानी की तरह पैसा गिरता है और सोना गिरता है और दीन के रस्तों में गिरता है। और वो जब पाकिस्तान आए थे तो रिटायर होकर आए थे, सारी ज़िंदगी कमा ली है नॉर्वे में। एक वक्त होता है रिटायरमेंट ले लें, गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, आप आराम करें, रिटायर्ड थे। लेकिन ये ज़मीन का टुकड़ा इधर आए, ख़रीद के चले गए। उसके साथ उनका अपना ज़ाती घर है, जो एक बड़ी कोठी डबल स्टोरी है। वो पहले से कह चुके हैं कि ये स्कूल के लिए, उधर क्लासेस भी शुरू हो गई हुई हैं। अब साथ मदरसे की जगह ली। वापस जब नॉर्वे गए हैं तो दोबारा अपनी जॉब ज्वाइन की। काम ऐसा ही है कि वो खुद कर सकते हैं उसको। क्यों? क्या अब इसके पैसे मैं पाकिस्तान भेज के इस ज़मीन पर घर बनवाऊँगा? बेटे दे सकते हैं, अरबपति लोग हैं, बेटे भी ऐसे प्यारे कि जिसको कहें कि सर ना उठाएं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैंने बच्चों को नहीं कहना, खुद जिसने देना होगा कभी देते हैं देंगे, मैंने अपनी मेहनत से बनाना है। और अब वो तैयार है कि आप जैसे लोग जाएं वहाँ कुरान पढ़ें, जिसको कुरान आता है तो बैठें जाएं वहाँ लोगों को। अब उस मदरसे को हम सब ने मिल के चलाना है, आप सब ने। और अगले दिन दूसरे शहर गए तो वहाँ जब देखा तो एक माँ बाप का घर, छोटा सा, सफ़ेद पोश लोग हैं, छोटा सा घर है, मैं क्या बताऊँ, नीचे का तो हमने नहीं देखा, लेकिन उसकी हालत ही हस्ता थी। विरसे का घर था, अब उस घर में हिस्से मिले होंगे बहनों को, भाइयों को। एक बहन ने उसी घर के ऊपर अलग जगह, खुली छत थी, उसने कहा कि मुझे इजाज़त दे दे, मैं इसमें एक कमरा डाल के मदरसा बनाना चाहती हूँ। कल यकीन करिए, आपके इस रूम से ज़रा सा लंबा कमरा है, बिल्कुल नया, साफ़ सुथरा, उन्होंने 4 दीवारी करके उसमें अभी फर्नीचर भी नहीं डाला। और कल जिक्र हुआ तो पता चला कि जितने पैसे थे वो दीवारों पे लगा दिए। उस बेटी ने खुद बनाया कि ये स्कूल के लिए मदरसे, और अब वहाँ तजलियात नबूवत, फिर दौरे कुरान, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला क्लास शुरू होगी ना। ये जज्बे हैं ना, कौन किसी को कह सकता है। कई लोग अपना ड्राइंग रूम नहीं खोलते कि बच्चे आएंगे घर गंदा कर जाएंगे, हम नहीं खोलते, तो ये ड्राइंग रूम साथ तो नहीं जाने ना। ये जज्बे कितने दी, और वो बड़ी रिग्रेट फील कर रही थी, छोटी जगह नहीं। मैंने कहा जितनी मुझे इसकी खुशी है इतनी तो मुझे किसी और चीज़ की खुशी नहीं है। क्यों? ये आज बीज डाल, ये हमें आपने इस शहर में कदम रखने की जगह दी है। खुद ही बोली कि एक वक्त आएगा ये नीचे वाला पोर्शन भी सारा हमने स्कूल के लिए बना लेना है। ये जज्बे कौन देता है? कभी मांगा किसी से? फर्नीचर की बात ही, मैंने कहा आप एक आवाज़ लगाएं, मैं आपके लिए 10 स्पॉन्सर ढूंढवा सकती हूँ। ज़ाहिर है वहाँ सब कुछ ही चाहिए, कंप्यूटर्स भी चाहिए, बट छोटी सी जगह, लेकिन चाहिए तो होता है। तो मैंने कहा हम सब कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग खुद कर रहे हैं, तो करते जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा, सिलसिला बनता जाएगा, ताकि आपको एहसास हो रहा है कि आपने मोहब्बत से ये चीज़ बनाई है ना। तिनके जोड़ के घोंसला बनता है तो उसकी कदर ज़्यादा होती है। ये जज्बे कुरान के आते हैं, और वही बात कि हमारी वजह से हमारे इर्द गिर्द को फ़ायदा हो जाए। कितने इसके ऑपोजिट रिसोर्सेज वाले लोग बैठे हैं, 5 लाख का जोड़ा दुल्हन को देकर आप पहना के बिठाते हैं स्टेज पे, क्या तीर लेके आते हैं, और क्या वो खूबसूरती में इजाफा, क्या मिस वर्ल्ड का उनको टाइटल मिलता है। चले 5 लाख लोगों को बताते हैं, अंदर से 3 लाख का तो आया ही होगा ना। 7 लाख का भी जोड़ा मैंने इस ट्रिप में सुन लिया, चले 7 का नहीं होगा, वो 3.5 लाख का तो होगा। आज भी एक छोटा सा डारा बन जाता है, कमरा बन जाता है, एक बाथरूम बन जाता है, जिसमें ये बेचारे गरीब रह सकते हैं 2-3 लाख में। लेकिन आज हमें इसका एहसास नहीं है। हाँ हम उम्रा कर आते हैं, कहते हैं कर लिए ना निकी का काम, ज़कात दे देते हैं ना, वही बांट के अपने रिश्तेदारों को फिर तोहफों में दे देते हैं कि ले लो जी, वो खुश होते हैं, तोहफे बड़े मिलते हैं, अंदर से वो ज़कात का माल होता है। अपनी मासियों के हाथ गर्म करते रहते हैं थोड़े थोड़े दिन बता के कि चलो भाजी तनख्वाह थोड़ी देती है, ऊपर से बड़ा देती है, वो पता चला अपना देती है तुम्हारा नहीं देती। समझ रहे हैं? ये दिलों की बात है। तो ये दुआ करें कि अल्लाह इस काम में हिस्सा डालने में दिल खोल दें। यसलूना कमाज अयुन पे कौन, 2 दफ़ा कुरान में वो सवाल करते हैं क्या खर्च करें। सहाबा के सवाल ये थे क्या खर्च करें, ये कब आता है तड़प, कहाँ हिस्सा डले, हमारी नेकी, ये मेरी नेकी है, ये मेरी कब हो, जब अंदर शौक होता है कि मेरा इधर हिस्सा डल जाए। और हम क्या कहते हैं, वो ज़कात डोरियों की भी होती है, नगों का वजन भी काटना है, नए सोने का रेट है कि पुराने का, जेवर पे अपने ज़कात देनी भी दोबर लगी। 10 दफ़ा लोगों से सुनी हुई है बात कि जेवर बेच दो ज़कातों में कट जाएगा सारा, तो ये भी तो फिर दिल की बातें हैं ना।